प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा से भविष्यद्वाणी की और अलग अलग राज्यों के विनाश के बारे में हमें बताया। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से आगे की वचन को हमें सुनाता है। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं उसे समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से हम चलने वाले बन जाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो किसी प्रकार से निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दबाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, अपने अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, अपने जीवन में संतान को पाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, उन सब की आप सहायता करें। इस घड़ी हम सब से अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने देखा है कि यरूशलेम के बारे में परमेश्वर का भारी वचन सुना गया है। अब हम प्रतीकात्मक नाम को देखेंगे, शेबना और इलियाकीम। हिजकिया के युग के अभिलेखों का संदर्भ यहाँ ध्यान देने योग्य है। अनेक विचारकों ने शेबना को ख्रिस्त विरोधी का और इलियाकीम को प्रभु यीशु का प्रतीक माना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त विरोधी को इस संसार से उखाड़ फेंकेगा, ऐसा कहना है। तो आइए हम देखेंगे यशाया के पुस्तक 22 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है जाकर कह। शेबना भंडार का रखवाला था परंतु वह विश्वास योग्य नहीं था। वह पैसों में हेर फेर करता था जैसा कि आज बहुत सारे लोग करते हैं। उसे हिजकिया ने नियुक्त किया था। आप इसे देख सकते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय उसके 18 पद में, 19 अध्याय उसके 2 पद में, यशाया 36 अध्याय के 3 पद में और 37 के 2 पद में। आगे हम पढ़ते हैं यशाया 22 अध्याय के 16 पद में, यहां तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। शेबना अपना नाम बनाए रखने के लिए अपनी कब्र बनवा रहा था। यह एक उपहासजनक बात थी क्योंकि वह तो विदेश में मरकर वहीं दफनाया जाएगा। हम इसे देखते हैं पद 17 और 18 में, यशाया 22 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, मेरे विचार में शेबना ख्रिस्त विरोधी की झलक है। यशाया 22 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, उस समय मैं हिल्किया के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। शेबना के बाद एलियाकीम ने उत्तरदायित्व संभाला। वह निस्वार्थ सेवक था। यहां उसमें और शेबना में विषमता दिखाई गई है। यशाया इन दो व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा है जो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव रखते हैं। शेबना ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक है और एलियाकीम प्रभु यीशु का। यशाया की भाषा बड़ी विचित्र है। यशाया के पुस्तक 22 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। मेरे प्रियो, यह पद हमें नए नियम में कहे गए प्रभु यीशु के वचनों का स्मरण कराता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मेरे मित्रों, यह कैसा सौभाग्य है कि हम अपनी जीवन उसके हाथों में दे दें जो द्वार खोलने और बंद करने योग्य है। यशाया के पुस्तक 22 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। इसी प्रकार हमारा उद्धार उस पर निर्भर करता है। यशाया 22 उसके 25 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। मेरे प्रियो, उस समय अर्थात महाक्लेश के समय यह पद शेबना का संदर्भ देता है, क्योंकि वह ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक है। ख्रिस्त विरोधी के आने पर बहुत जन उस पर भरोसा करेंगे। वे सहायता के लिए उसे निहारेंगे, वे उसे मसीह मानेंगे, परंतु वह दृढ़ स्थान में गाड़ी गई खूंटी गिर जाएगी। मेरे प्रियो, क्या आपको यह अनुभव हुआ है कि आपने दीवार में एक मजबूत कील ठोंक दी और जब आप उस पर कपड़े टांगे तो वह उखड़ गई? प्रभु यीशु ही है जो दृढ़ खूंटी होगा। शेबना गिरने वाली खूंटी था और उसके जैसे अन्य सब भी गिरने वाले खूंटी हैं। क्या आप अपना सब कुछ एक दृढ़ खूंटी पर टांग रहे हैं? बहुत से मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं। वे अपना सब कुछ एक ऐसी खूंटी पर टांग रहे हैं जो दृढ़ नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें, वे जगह जगह निवेश करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि मैंने अपने वकील पर भरोसा किया और उससे चूक हो गई, वह दृढ़ खूंटी नहीं था। कुछ लोग प्रचारकों पर भी भरोसा करते हैं और अंत में देखते हैं कि वह दृढ़ खूंटी नहीं है। केवल प्रभु यीशु ही दृढ़ खूंटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना सब कुछ उसके भरोसे पर छोड़े हुए हैं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 22 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 23 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि सोर के विषय परमेश्वर का भारी वचन। इस अध्याय में देश देश के लिए परमेश्वर के भारी वचन की अंतिम भविष्यवाणी है, 11वीं भविष्यवाणी। ये दंड की भविष्यवाणियां हैं जो इसराइल के पड़ोसी राज्यों के बारे में कही गई थी। इन राष्ट्रों में से प्रत्येक राष्ट्र हमारे सामने कोई न कोई सिद्धांत, दार्शनिक विचार या धर्म तंत्र को रखता है जिसके लिए परमेश्वर दंड देगा। मैं इन 11 राष्ट्रों और उनके दंड के कारणों को दोहराता हूं तो आप ध्यान दीजिए। पहला है बेबीलोन। बेबीलोन मिथ्या धर्म और मूर्ति पूजा का प्रतीक था। हमारे देश की बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से भर में गए हैं और कई प्रकार के बातों में उलझे हैं, जैसे लालच अर्थात धनोपार्जन और सांसारिक वस्तुओं का संग्रह। दूसरा है पलिस्तीन, सच्चे धर्म का प्रतीक है परंतु उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है। आज अनेक कलीसियाओं की यही स्थिति है, वे विरोधियों का पालन करते हैं, वे विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना को पढ़ते हैं, वे बाहरी रूप से तो बाइबल का अनुसरण करते हैं परंतु मन से बाइबल की बातों का इनकार करते हैं, वे अपने विश्वास से पथ भ्रष्ट हो गए हैं। तीसरी जगह को हम देखेंगे मोआब, भक्ति का रूप तो धारण करता है परंतु उसके सामर्थ्य का इनकार करता है, यह एक दिखावे का धर्म है। हम आज इन तीन में से एक हैं, हम सांसारिक वस्तुओं की लालसा करते हैं, हम में से कुछ बाइबल आधारित कलीसियाओं से हैं परंतु हमने बाइबल की शिक्षाओं को त्याग दिया है। कुछ लोग आराधनाओं में रीति रिवाजों का पालन करते हैं जो देखने में अति उत्तम है परंतु मृतक है। चौथी बात हम देखते हैं दमिश्क, समझौते का प्रतीक है। आज अधिकांश कलीसियाएं रूढ़िवादी भी हैं, इस जंगल में फंस गई हैं। सत्य पर अटल रहने वाली कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पांचवी जगह को देखें इथोपिया, मिशन सेवा का प्रतीक है। हमें आज वचन के प्रचार में सक्रिय होना है ताकि लोग प्रभु के वचन सुनकर बचाए जाएं। और छठवां है मिस्र, संसार का प्रतीक है। इसराइल को मिस्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी, वहीं जाकर अब्राहम संकट में पड़ गया था। हमें चेतावनी दी गई है संसार से प्रेम मत करो, हम में से अनेकों को संसार के साथ समस्याओं का सामना करना होता है। अब सातवीं जगह को हम देखेंगे फारस अर्थात बेबीलोन, भोग विलास का प्रतीक है। हम अपने समृद्ध समाज में विलासिता प्रिय हैं। और आठवां है एदोम, देहिक लालसाओं का प्रतीक है। आज हम देह के दास हैं, गुलाम हैं। और नौ है अरब, युद्ध का प्रतीक है। हमारे समाज में दो प्रकार के मनुष्य हैं, बाज और कपोत, दोनों ही सांसारिक हैं। शांति प्रिय लोग भी कहते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए युद्ध की आवश्यकता है। और दसवां है दर्शन की तराई, यरूशलेम धर्म नहीं राजनीति का प्रतीक है। मनुष्य प्रायः सोचता है कि संसार की समस्याओं का समाधान राजनीति है। और ग्यारहवां है सोर, बड़े बड़े व्यापार का प्रतीक है। आज हम सोचते हैं कि पैसा हमारी सब समस्याओं को दूर कर देगा, हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। क्यों? अभक्त मनुष्यों के पास कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। मेरे प्रियो, गरीबों को यह बात समझ में नहीं आती है क्योंकि वे भी परमेश्वर से दूर हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के मन में ही गरीबों के लिए सच्चा प्रेम है और वही जानता है कि उनकी सहायता कैसे की जाए। अब हम सोर के विषय में परमेश्वर का भारी वचन देखेंगे। सोर और सिदोन फिनिके के दो महान नगर थे। सिदोन मुख्य नगर था परंतु शीघ्र ही सोर ने उसे पीछे छोड़ दिया। सोर समृद्ध था अतः घमंड से भरा हुआ था। फिनिके के जहाज भूमध्य सागर के प्रत्येक बंदरगाह में जाते थे, वे इंग्लैंड से टीन लाते थे। यहां पर हम देखते हैं कि बर्तानिया का अर्थ है टीन का देश। फिनिके वासी उग्र और उन्नतिशील लोग थे। उत्तरी अफ्रीका का कर्थेज नगर उन्हीं लोगों ने बसाया था। कर्थेज रोम का बहुत बड़ा दुश्मन था, वह फिनिके वासियों का भी नगर था। कुत्रुस की समृद्धि सोर के साथ व्यापार करके ही आई थी। फिनिके वासियों ने अनेक केंद्र स्थापित किए थे जिसका एक उदाहरण तर्शीश है। आपको स्मरण होगा कि योना ने परमेश्वर से दूर भागने के लिए तर्शीश का टिकट लिया था। तर्शीश स्पेन के दक्षिणी तट पर था। तर्शीश किसने बसाया था? फिनिके वासियों ने। ध्यान रखने वाली एक और बात है कि फिनिके वासियों ने ही अक्षरों की भी खोज की थी। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि सोर देश का राजा हीराम दाऊद का अच्छा मित्र था। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 26 के अध्ययन में हम सोर के विषय बड़ी अद्भुत भविष्यवाणी को देखेंगे। यह भविष्यवाणी एक एक शब्द पूरी हुई थी। परमेश्वर ने कहा था कि सोर का विनाश बेबीलोन के हाथों निश्चित है और वे भी यहूदा के समान 70 वर्ष दासत्व में रहेंगे। वे भी इसराइल के समान ही फिर स्वदेश लौटे थे और भूमध्य सागर के मध्य एक द्वीप पर बसे। यह द्वीप उनके मुख्य नगर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर समुद्र में है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने कहा था कि उस प्राचीन नगर का मलबा भी उठाया जाएगा। इसे हम यहेजकेल की पुस्तक 26 अध्याय उसके 4 पद में देखते हैं। आगे चलकर सिकंदर महान ने उस प्राचीन नगर का मलबा उठाकर समुद्र में उनके द्वीप तक पहुंचाने का मार्ग बनाया था। वह समुद्री युद्ध न करने में बुद्धिमान निकला, क्योंकि फिनीके वासी जहाजों के विषय प्रवीणता रखते थे। उसने मुख्य भूभाग से मार्ग बनाकर उस द्वीप पर आक्रमण किया था। मैंने उस मार्ग के बारे में सुना है कि वहां मिट्टी के पात्रों के टुकड़े ही टुकड़े बिछे हुए हैं। आपको एक भी टुकड़ा उठाने की अनुमति नहीं है। यहां पर यह मलबा कहां से आया? सिकंदर महान ने सोर के प्राचीन नगर को कुरेद कुरेद कर मलबा समुद्र में डलवाया था। सिकंदर महान द्वारा सोर पर विजय ठीक वैसे ही थी जैसे यहेजकेल की पुस्तक 26 अध्याय उसके 14 पद में लिखी है, मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया ना जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मेरे मित्रों, आज वहां एक तुर्क नगर है, परंतु प्राचीन सोर का स्थान खंडहर ही है। आज यदि कोई नास्तिक परमेश्वर के वचन को झूठा कहे तो मैं उसे सुझाव दूंगा कि वह व्यर्थ की बातें करने की अपेक्षा जाकर सोर नगर का पुनः निर्माण करे। मैं उसे यह भी बता देना चाहता हूं कि कुछ मनुष्यों ने इसका प्रयास किया है परंतु सफल ना हुए। वहां एक नगर है, चट्टानों में तराशा गया पेत्रा नगर, जो वहां जाने के लिए तैयार है, परंतु परमेश्वर के कहे अनुसार वह नगर फिर न बसाया जाएगा। एक अविश्वासी कुछ लोगों को लेकर के पेत्रा गया और वहां बसने का प्रयास किया, परंतु अधिक दिन नहीं टिक पाया। मेरे प्रियो, आप भी सफल नहीं होंगे। परमेश्वर ने कह दिया है कि सोर फिर से नहीं बनेगा और पेत्रा बसाया न जाएगा। सोर के विनाश का परमेश्वर का उत्तरदायित्व है। आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यशाया की पुस्तक 23 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, सोर के विषय में भारी वचन, हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया, वहां न तो कोई घर और न कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई। तर्शीश भी सोर वासियों का ही एक उपनगर था। जब जहाज सोर देश लौट रहे थे तब उन्हें समाचार मिला कि सोर नगर नष्ट किया गया है। वे दूर ही से नगर से उठता धुआं देख सकते थे। शीघ्र ही उन्होंने देखा कि उनका नगर मिट्टी में मिला दिया गया है और बंदरगाह बंद हो गया है। अब वह नगर एक महान व्यापारिक केंद्र नहीं था। आगे हम पढ़ते हैं यशाया 23 उसके 2 पद में, हे समुन्द्र तीर के रहने वालों, जिनके समुद्र के पार जाने वाले सीदोन व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। सीदोन सोर के तट पर 45 किलोमीटर ऊपर की ओर था। सीदोन और सोर के नाम साथ साथ लिए जाते थे। ये नगर फिनीके के मुख्य नगर थे। सीदोन के मुख्य जल व्यापारियों ने सोर का निर्माण किया था। यह एक अति रोचक बात है कि सोर के विनाश की भविष्यवाणी एक एक शब्द पूरी हुई थी। सीदोन के विनाश की भविष्यवाणी नहीं है, अतः सीदोन आज भी है। वहां से आज तेल जहाजों में भरकर बाहर जाता है। यशाया की पुस्तक 23 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह दूसरी जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। शिहोर का अर्थ है काला। यह नील नदी का ऊपरी भाग है। नील नदी की मिट्टी ने मिस्र देश को उपजाऊ बनाया था। मिस्र का माल सोर के बंदरगाह से बाहर जाता था। अब क्योंकि सोर बंदरगाह बंद हो गया था, मिस्र को भी हानि उठाना पड़ेगा। यशाया की पुस्तक 23 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे सिदोन लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैंने न तो कभी प्रसव की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। यहाँ सोर को सिदोन की पुत्री कहा गया है, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी सही है। तब हम आगे देखते हैं यशाया 23 उसके 5 पद में, जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। सोर के विनाश के कारण मिस्र का व्यापार भी ठप हो गया था। आगे यशाया 23 के 6 पद में लिखा है, हे समुद्र तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि सोर के पतन के कारण विश्वव्यापी विलाप हुआ। स्पेन के एक उपनगर तक विलाप का वातावरण था। सोर के कुछ निवासी जहाजों पर सवार होकर तर्शीश भाग गए थे। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को पराजित किया था। तब हम पढ़ते हैं यशाया 23 के 7 पद में लिखा है, क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भी भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे। एक महान व्यापारिक केंद्र जो मनोरंजन का स्थान था और मनोरंजन के अनेक साधन होते थे जो देह को प्रसन्न करते हैं। सोर वासियों से कहा गया कि वे जितना दूर हो सके भाग जाएं, क्योंकि उस आनंद नगरी का अब अंत आ गया है। यशाया 23 उसके 8 पद में लिखा है, सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरोध किसने ऐसी युक्ति की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, सोर नगर ने उपनगरों की स्थापना की थी और वहां शासक रखे थे। इंग्लैंड ने भी ऐसा ही किया था। ऐसा देश राजा रानी के विधान एवं व्यवस्था के अधीन होता है, उनका अपना संविधान और सरकार नहीं होती है। यशाया 23 के 9 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठों का अपमान करवाए। सेनाओं के यहोवा ने सोर के विनाश का संकल्प किया और उसे इसका पछतावा नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि सोर के विनाश का मानवीय उत्तरदायित्व। यशाया के पुस्तक 23 अध्याय के 10 पद में लिखा है, हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ, अब कुछ बंधन नहीं रहा। जी हाँ, ध्यान दीजिए, जैसे नील नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकल आता था, वैसे ही तर्शीश के निवासी भी अब स्वतंत्र हो गए हैं, क्योंकि सोर का पतन हो गया है, वह अब उन पर राज नहीं कर सकता। अब कुछ बंधन नहीं रहा अर्थात अब उन पर प्रभुता करने वाला कोई नहीं था। यशाया 23 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी है। क्या आपने सोर का 3 गुना वर्णन देखा है? पद 7 में सोर को आनंद नगरी कहा गया है और पद 8 में उसे सरताज नगरी कहा गया है और पद 11 में उसे व्यापारिक नगरी कहा गया है। अब हम देखते हैं यशाया 23 उसके 12 पद में लिखा है, और उसने कहा, हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं, उठ पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन ना मिलेगा। पद 4 में सोर को जो कहा गया है वह पद इसमें स्पष्ट व्यक्त है, सिदोन की पुत्री अर्थात कुमारी। सीदोन के धनवान व्यापारियों ने सोर को बसाया था, उनकी समृद्धि का आनंद समाप्त हो जाएगा। सीदोन और सोर दोनों ही को कष्ट होगा। कित्तियों के पास जा। कुछ सोरवासी सोचते थे कि कुप्रुस जाकर वे नया जीवन आरंभ करेंगे, परंतु वे निराश होंगे। परमेश्वर ने मानवीय साधन काम में लिया, परंतु करने वाला तो वही था। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ेंगे यशाया 23 उसके 13 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कस्तियों के देश को देखो, वह जाति अब ना रही। अश्शूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने मोर्चेबंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडहर कर दिया। मेरे मित्रों, जिस समय अश्शूर अपनी चरम सीमा पर था, तब कस्ती बेबीलोन एक अकिंचन नगर ही था। अब बेबीलोन विश्व शक्ति था। आगे लिखा है यशाया 23 उसके 14 पद में, हे तर्शीस के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। मेरे मित्रों, हम इस अध्ययन में यहाँ पर ये पाते हैं कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी अपने दास के द्वारा से कही, उसको उसने पूरा किया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपके और जीवन के लिए बहुत सारी ऐसी बातों को प्रभु यीशु के माध्यम से, बाइबल के द्वारा से हमें बताया गया है, ताकि हम उस पर विचार करें और उस नाश से बच जाएं जो अनंतकालीन नाश है। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के निकटता में इस वचन के प्रकाशन में देखें और प्रभु से कहें कि प्रभु, आप मुझे नाश होने से बचाएं, मेरे जीवन में अपनी शांति और आनंद प्रदान करें, और निश्चय ही परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु ने आपको अवश्य ही आशीष प्रदान किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मसीहा की परस्तिश में, मसीहा की परस्तिश में बहुत आराम मिलता है। दुआ में एक नया पैगाम, दुआ में एक नया पैगाम सुबह शाम मिलता है। मसीहा की परस्तिश में बहुत आराम मिलता है।